समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। जी हां, कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है, कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहादुरी है। जीवन में आने वाली प्रत्येक कठिनाइयां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और वैसे भी अगर मुश्किलें हैं तो उनका हल भी हमारे पास जरूर होता है, बस थोड़ा ठहर कर इत्मीनान से हमें सोचने की जरूरत होती है, और शायद इसे ही हम जीना कहते हैं। इसी के साथ ही आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में मैं आपके साथ हूं आकर्षिता सिंह, और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट शेफाली। गुड मॉर्निंग शेफाली।
गुड मॉर्निंग आकर्षिता, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। सो डियर लिसनर्स, जैसा कि आकर्षिता ने कहा कि जिंदगी में कई कठिनाइयां होती हैं और हमें उसका डट के मुकाबला करना चाहिए, तो उसी विचार को लेकर मैं कहूंगी दैट वी डोंट हैव द पावर टू चूज वेयर वी कम फ्रॉम, बट वी डेफिनेटली कैन चूज वेयर वी गो फ्रॉम हियर। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर इन ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर वील ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 9th of July। सो लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस फर्स्ट।
जी, और श्रोताओं अब नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत और रूस के बीच 22वीं वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन रक्षा, व्यापार संबंध, निवेश संबंध, ऊर्जा सहयोग, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित द्विपक्षीय मुद्दों की समीक्षा करेंगे। वे आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी दृष्टिकोण साझा करेंगे। दोनों नेता ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन, G20, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र जैसे समूहों में द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति का भी आकलन करेंगे। श्री मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मॉस्को पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस में भारतीय समुदाय से बातचीत भी करेंगे। वे क्रेमलिन में सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और मॉस्को में प्रदर्शनी स्थल पर रोसाटॉम पेविलियन का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी।
In Jammu and Kashmir, 5 army soldiers, including a JCO, were killed and 5 others injured in a terrorist attack in Kathua district of Jammu Division yesterday. Akashwani Jammu correspondent reports that the attack took place in the Badnota village in Machedi area of Bilawar subdivision of Kathua district. The injured soldiers have been shifted to sub-district hospital Bilawar for advanced treatment. The terrorists threw a grenade and then opened fire with automatic weapons on the army vehicles that were on routine patrol duty on Machedi Kindli Malhar Road last afternoon. The security forces retaliated, but the terrorists escaped from the spot. Elite soldiers group were airdropped in Mandli sector in the evening close to the attack site area. The deceased have been identified as Nayab Subedar Anand Singh, Head Constable Tamil Singh, Rifleman Anut Singh, Rifleman Adarsh Singh and Naik Vinod Kumar. Further details are awaited.
मुंबई और महाराष्ट्र के कुछ भागों में मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई सहित राज्य के कई जिलों में कल तेज बारिश हुई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा, कोल्हापुर और बुलढाणा जिलों के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए आज दोपहर 1 बजे तक अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और वैज्ञानिक KS होशलीकर ने बताया कि पुणे, सतारा, पालघर, सिंधुदुर्ग और ठाणे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
In Assam, death toll due to flood-related incidents has reached 72. The flood scenario of the state improved slightly, but over 22 lakh people are still reeling under the deluge across 27 districts. More than 3,100 villages of 91 revenue circles have been affected by flood, and over 49,000 hectares of crop areas have been damaged across the state. NDRF and SDRF teams have rescued 218 people yesterday. River Brahmaputra, Barak and all their tributaries are flowing above danger level. The flood damaged 127 roads and two bridges apart from other infrastructure yesterday. The state government has opened 245 relief camps and 298 relief distribution centres. There are over 53,000 people in the relief camps.
पूर्वी नौसेना कमांड वायस एडमिरल राजेश पिंडारकर ने कल विशाखापट्टनम की समुद्री संदर्भ पुस्तकालय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने के प्रयासों के तहत ये कदम उठाया गया है। इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुभव केंद्र में नौसेना कर्मियों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से जुड़े अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वे इस क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रगति का लाभ उठा सके। इस पहल का उद्देश्य सेना के सभी क्षेत्रों में ज्ञान अनुभव और उसके प्रयोग को बढ़ावा देना है।
The Indian Olympic Association IOA has named Gagan Narang, four-time Olympian and 2012 Olympic Games men's 10-meter air rifle bronze medalist, as the chef de mission of the Indian contingent to compete in the Paris 2024 Olympic Games starting from 26 July. He will replace MC Mary Kom. The IOA president Dr. P.T. Usha yesterday said that Gagan Narang's elevation from deputy chef de mission's position was an automatic choice in the wake of Mary Kom's resignation. Dr. Usha further announced that India's only woman to win two Olympic medals, P.V. Sindhu, will be the female flag bearer alongside table tennis ace Achant Sharat Kamal in the opening ceremony. Dr. Usha also said that she is confident that Indian athletes are well prepared to deliver the best results for the country in Paris 2024 Olympic Games. And Akarshita, I think we'll all wish them all the very best for this.
जी, जी. चौथी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव पुरुष सिंगल्स की प्री क्वार्टर फाइनल में 13वीं वरीयता प्राप्त अमेरिका के टेलर फ्रिस्ट से हारकर विंबलडन टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। एक अन्य मुकाबले में 7 बार के चैंपियन और दूसरी वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 15वीं वरीयता प्राप्त डेनिश खिलाड़ी होल्गर रून को 6-3, 6-4, 6-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और श्रोताओं, आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें, और अब शिफाली चेन्नई से क्या खबरें हैं?
जी बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं चेन्नई मेट्रो की न्यूज से। Indian Institute of Technology Madras has partnered with Tel Aviv University, Israel and KMCH Research Foundation, Coimbatore to offer a water quality course aiming at creating water literate citizens. This 4-month-long course offers hybrid mode through NPTEL online platform and is ideal for final year science and engineering students and for those interested in water quality. And Akarshita, I would say that water quality se to hum sabhi concerned hai. It is a very important issue for all of us. And as part of the course, students will conduct practical tests including surveys. The course organizers are working towards building a water map of India. Students also will receive a course completion certificate as part of their degree program. The registrations will close on July 20. A hybrid course on water quality and an approach to people's water data. The course will deliver a comprehensive understanding of important aspects of water quality, analysis of key parameters and their impact on human health. The student will have the option to attend the lectures online or offline or even in recorded form. And there's another news from Chennai. Air intelligence officers of Anna International Airport at Chennai intercepted a male passenger who had arrived from Bangkok on the basis of an intelligence. On examination of the baggage carried by the passengers, 402 numbers of exotic wildlife species like green baby iguana, orange baby iguana, yellow baby iguana, blue baby iguana were concealed in carton boxes. Immediately on recovery of the boxes containing wildlife animals, officials from wildlife Crime Control Bureau at Chennai were informed and the passenger was remanded to judicial custody. The live species were deported to Bangkok after being certified. And now for news from Delhi, we move over to you, Akarshita.
जी, राजधानी के दक्षिणी रिज में पेड़ों की अवैध कटाई के मद्देनजर दिल्ली सरकार की बनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज छतरपुर स्थित सार्क चौक का दौरा करेगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि इस साइट पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सड़क चौड़ीकरण के नाम पर लगभग 1100 पेड़ों को अवैध रूप से काटा था। इस कमेटी में श्री भारद्वाज के अलावा दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी और इमरान हुसैन भी होंगे, जो अपनी रिपोर्ट दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को सौंपेंगे। इस कमेटी की रिपोर्ट उच्च न्यायालय को भी पेश की जाएगी। इससे पहले दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर आरोप लगाया था कि उनके मौखिक आदेश पर ये पेड़ काटे गए थे। बरसात के मौसम में डेंगू के मामले को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कल सभी अस्पतालों के प्रमुख अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। श्री भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता, डेंगू मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था और अन्य तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने डेंगू की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने के कई निर्देश जारी किए हैं। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग को यह निर्देश दिया है कि वे 5000 शिक्षकों के तबादलों पर पुनर्विचार करें। शिक्षकों, शिक्षक संगठनों और भाजपा के सांसदों ने इस संबंध में श्री सक्सेना से मुलाकात की थी। सभी लोगों ने उपराज्यपाल से अनुरोध किया था कि वे इन शिक्षकों के तबादले पर रोक लगाएं। इस प्रतिनिधिमंडल में भाजपा सांसद मनोज तिवारी, योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सहरावत और बासुरी स्वराज मौजूद थी। भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी ने अपने उर्दू पत्रकारिता पाठ्यक्रम के स्पॉट राउंड के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन अभ्यर्थियों का चयन उर्दू पत्रकारिता पाठ्यक्रम में पहले राउंड में नहीं हुआ था, वे अब स्पॉट राउंड के तहत संस्थान में दोबारा दाखिले की कोशिश कर सकते हैं। आईएमसी ने बताया कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 19 जुलाई है और प्रवेश परीक्षा 21 जुलाई को संस्थान की नई दिल्ली परिसर में आयोजित की जाएगी।
And now news from Bengaluru Metro. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah directed senior officials to ensure immediate settlement of compensation as per FDRF norms for those facing loss of life, crop and property due to rains. He was speaking during a meeting of deputy commissioners and Zilla Panchayat chief executive officers in Vidhan Sabha in Bengaluru yesterday. The chief minister said that 2,225 villages and 20,38,334 persons are affected by floods and landslides. The state has received 7% additional rains above normal. Due to excessive rainfall, 2,225 villages are facing flood situations. During pre-monsoon rains, 3,714 houses were damaged. He pointed out that the compensation to families of the farmers who committed suicide has to be settled immediately and should not be rejected due to minor technical reasons. Out of 1,003 applications received for compensation from the families of farmers who committed suicide due to distress, the government has paid compensations to 994 families. He told officials that 80% of the state population in Karnataka has BPL cards as against 40% in Tamil Nadu. He told officials to cancel fake BPL cards.
और श्रोताओं अब जानते हैं मुंबई की खबरें। महाराष्ट्र में हाल ही में हिट एंड रन की घटनाओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि न्याय में इस तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शिंदे ने कहा कि यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग सिस्टम में हेरफेर करने के लिए अपने पद का दुरूपयोग करते हैं। सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित महाराष्ट्र बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए श्री शिंदे ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो, प्रभावशाली हो या भी किसी भी पार्टी से जुड़े नौकरशाहों या मंत्रियों से संबंधित हो, किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। प्रत्येक नागरिक के जीवन को कीमती बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य पुलिस विभाग को इन मामलों को अत्यंत गंभीरता से संभालने और न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वहीं मुंबई की एक अदालत ने वर्ली बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में शिवसेना नेता राजेश शाह को जमानत दे दी है। अदालत द्वारा उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद उन्होंने जमानत के लिए आवेदन किया था। उन्हें 15,000 रूपये के मुचलके पर जमानत दी गई। ये मामला कथित तौर पर राजेश शाह के बेटे मिहिर से जुड़ा है, जिसने रविवार सुबह वर्ली इलाके में बाइक सवार जोड़े को टक्कर मार दी थी। इस दुर्घटना में 45 वर्षीय महिला कावेरी नखवा की मौत हो गई, जबकि उनके पति प्रदीप घायल हो गए। भारत के चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनता से स्वैच्छिक योगदान स्वीकार करने की अनुमति दे दी है। पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले के नेतृत्व में पार्टी के 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को आयोग से मुलाकात के बाद यह सूचना जारी की। वहीं महाराष्ट्र के विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार को स्थगित कर दी गई, क्योंकि मुंबई और राज्य के अन्य हिस्सों में भारी बारिश के कारण कई विधायक और अन्य अधिकारी विधान भवन नहीं पहुंच पाए।
नाउ न्यूज फ्रॉम हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी हैज सेड दैट The government will set up a skill development university in the state, which will help youth to acquire required skills to improve their employment opportunities. Following a representation from industrialists on the skill university during his visit to the Engineer Staff College at Gachibowli, he directed officials and industry leaders to come up with proposals on skill development university a couple of days before the assembly session to be held during this month. He further said the government will take a decision within 24 hours after receiving the proposals.
अब जानते हैं कोलकाता का हाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के 8 केंद्रीय सुधार गृहों में टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की है। बरुईपुर, दमदम, बहरामपुर, मेदिनीपुर, बर्धमान, बालुरघाट और जलपाईगुड़ी केंद्रीय जेलों में ये सेवा उपलब्ध है। भविष्य में सभी 60 जेलों या सुधार गृहों में यह सेवा उपलब्ध रहेगी। सरकार ने बताया है कि ई मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा दी जाएगी। जेल में बंद कैदी और संबंधित जेल के एक डॉक्टर को विशेषज्ञ डॉक्टर की सेवा मिलेगी। सभी दवाएं जेल प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और अगर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है तो सरकार उसका भी ध्यान रखेगी। आकाशवाणी गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं प्रमुख महानगरों के मौसम की। सबसे पहले दिल्ली के मौसम का हाल। आज राजधानी और आसपास के भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। वहीं मुंबई में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहने का अनुमान है। बादल छाए रहने के साथ भारी बारिश की संभावना है। वहीं कोलकाता में आज कुछ समय के लिए बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 35 और 28 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं।
Chennai is expected to have partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 25 degrees Celsius and maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with moderate rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 27 degrees. And Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with moderate rain. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius.
और श्रोताओं, आइए अब जानते हैं इतिहास में आज के दिन क्या-क्या हुआ।
On this day in the year 1875, the Bombay Stock Exchange, the first in India, was constructed under the shade of a large banyan tree.
और इससे पहले 1819 में सिलाई मशीन के आविष्कारक एलायस हाउ का जन्म हुआ था।
In 1915, Germany surrenders Southwest Africa to Union of South Africa. And in 1916, first cargo submarine to cross Atlantic arrives in US from Germany.
और 1973 में ब्रिटानी महारानी के प्रतिनिधि के रूप में राजकुमार चार्ल्स ने 300 साल पुराने उपनिवेश बहामास में आखिरी रात बिताई।
And in 1939, a meeting of 6,000 Indians held at the Indian Sports Ground in Johannesburg, South Africa, launched the passive resistance campaign against apartheid and racial policy in South Africa. In 1951, India's first five-year plan was prepared and published. There was the First Amendment to the Constitution and the first general elections were held. And in 1969, on this day, India accepted Royal Bengal tiger as its national animal as recommended by the Indian Wildlife Board. This tiger is also known as the Majestic Tiger. In 1991, South Africa readmitted to Olympics. And in 1994, Russian spacecraft Soyuz TM-18 lands after successful trip to MIR space station.
वहीं 2002 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी का नाम बदलकर अफ्रीकन यूनियन किया गया. वहीं 2004 में एशियाई विकास बैंक ने आतंकवाद से लड़ने हेतु अपने 42 सदस्य देशों के लिए एक कोष बनाया और 2007 में भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हिमांशु जैन को ग्लास साइंस के क्षेत्र में ध्यात्व कार्य हेतु ओटटो स्कॉट रिसर्च पुरस्कार प्रदान किया गया. और श्रोताओं, अब बात उन महान शख्सियतों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है. आज भारतीय सिनेमा के फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरु दत्त की जयंती है. गुरु दत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था. गुरु दत्त अपने आप में एक संपूर्ण कलाकार बनने की पूरी पात्रता रखते थे. वे विश्व स्तरीय फिल्म निर्माता और निर्देशक थे. साथ ही में उनकी साहित्यिक रुचि और संगीत की समझ की झलक हमें उनकी सभी फिल्मों में दिखती है. वे एक अच्छे नाटक भी थे क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्मी जीवन का आगाज किया था प्रभात फिल्म्स में एक कोरियोग्राफर की हैसियत से. अभिनय कभी उनकी पहली पसंद नहीं रही मगर उनके सरल, संवेदनशील और नैसर्गिक अभिनय का लोहा सभी मानते थे. उन्होंने प्यासा के लिए पहले दिलीप कुमार का चयन किया था. वे एक रचनात्मक लेखक भी थे और उन्होंने पहले पहल इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में कहानियां भी लिखी. उनकी प्रमुख फिल्में थी प्यासा, कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम और चौधरी का चांद. आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत.
And listeners, although he worked in a variety of genres, I would say Guru Dutt's best style came across in his work with melodramas. Ji, Akarshita?
Ji, bilkul.
And listeners, today we are also celebrating the death anniversary of Vinicius de Moraes, who is nicknamed as the Little Poet. He was a Brazilian poet, diplomat, lyricist, essayist, musician, singer and playwright. His lyrics and compositions were instrumental in the birth and introduction to the world of bossa nova music. Now, bossa nova is a relaxed style of samba developed in the late 1950s and early 1960s in Rio de Janeiro, Brazil. So let's listen to Vinicius de Moraes.
Saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza.
And dear listeners, today is also the death anniversary of Alice Paul, who was an American Quaker, suffragist, feminist and women's rights activist and one of the foremost leaders of the campaign for the 19th Amendment to the U.S. Constitution, which basically prohibited sex discrimination and the right to vote. And she played a role in the inclusion of women as a group protected against discrimination by the Civil Rights Act of 1964.
और श्रोताओं, आज हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता संजीव कुमार की जयंती है. इनका नाम हरिभाई जरीवाला था लेकिन फिल्मी दुनिया में ये अपने दूसरे नाम संजीव कुमार के नाम से प्रसिद्ध हैं. फिल्मी दुनिया में संजीव कुमार ने नायक, सहनायक, खलनायक और चरित्र कलाकार की भूमिकाओं को निभाया. वर्ष 1970 में ही प्रदर्शित फिल्म दस्तक में उनके लाजवाब अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया. वर्ष 1972 में प्रदर्शित फिल्म कोशिश में उनके अभिनय का एक नया आयाम दर्शकों को देखने को मिला. फिल्म कोशिश में संजीव कुमार ने गूंगे की भूमिका निभाई. बगैर संवाद बोले, सिर्फ आंखों और चेहरे के भाव से दर्शकों को सब कुछ बता देना संजीव कुमार की अभिनय प्रतिज्ञा का ऐसा उदाहरण था जिसे शायद ही कोई अभिनेता दोहरा पाए। खिलौना, दस्तक और कोशिश जैसी फिल्मों की कामयाबी से संजीव कुमार शोहरत की बुलंदियों पर जा बैठे। इनके द्वारा अभिनीत प्रसिद्ध फिल्मों में शोले, अंगूर, त्रिशूल, पारस, अनामिका, मनचली, शतरंज के खिलाड़ी, सीता और गीता, आधी मौसम विधाता, नया दिन नई रात आदि हैं। उन्हें दो बार राष्ट्रीय पुरस्कार व दो बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। आइए सुनते हैं शोले फिल्म का उनका ये डायलॉग।
तू क्या लड़ेगा मुझसे ठाकुर, तेरे तो हाथ काट कर फेंक चुका हूँ मैं।
सांप को हाथ से नहीं पैरों से कुचला जाता है कब्बर, तेरे लिए तो मेरे पैर ही काम है। बहुत जान है इन हाथों में।
And dear listeners, today is the birth anniversary of Tabassum, an Indian actress, talk show host and even a YouTuber who started her career as a child actor, Baby Tabassum, in 1947. She later had a television career as the host of first TV talk show of Indian television, Phool Khile Hai Gulshan Gulshan. It ran on national broadcaster Doordarshan from 1972 to 1993, wherein she interviewed film and TV personalities. In 2016, she launched her channel on YouTube titled Tabassum Talkies, which you can still go and have a look at. It consisted of nostalgic talks, interviews of celebrities, shayaris, jokes and more. Subsequently, she returned to television with Tab Aur Ab in 2020. So let's listen to a clip from one of her talk shows.
खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। बड़ा मशहूर शेर नहीं है, लेकिन हमारे कुछ दर्शक जो हैं, वो सोचते होंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। मतलब बहुत आसान है, वो ये कि तोप और तलवार की ताकत से ज्यादा ताकत होती है इंसान के कलम में। और हमारे आज के मेहमान हैं साहिब कलम आनंद बख्शी साहब।
आज भारत के प्रख्यात शायर एवं लेखक सरदार अंजुम की पुण्यतिथि है। साल 2000 में पूर्व प्रथम महिला हिलरी क्लिंटन ने न्यूयॉर्क के अंतर्राष्ट्रीय शांति फाउंडेशन की ओर से सरदार अंजुम को द मिलेनियम पीस अवार्ड प्रदान किया था। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2005 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सन 1991 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनको भारत और विदेश दोनों में कई साहित्यिक समाजों, सांस्कृतिक मंचों और रचनात्मक नींव द्वारा सम्मानित किया गया है।
And dear listeners, today is also the birthday of Tom Hanks, an American actor and filmmaker. He's known both for his comedic and dramatic roles. He's one of the most popular and recognizable film stars worldwide and is regarded as an American cultural icon. Hanks made his breakthrough with leading roles in a series of comedies like Splash, The Money Pit and A League of Their Own. So let's listen to a track from one of his shows, Would You Be Mine?
In this neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Could you be mine? It's a neighborly day in this beauty wood. A neighborly day for a beauty. Would you be mine? Could you be mine?
आज प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक के बालाचंद्र का जन्मदिन है। उन्होंने कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी में 100 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया है। उनकी प्रमुख फिल्में हैं अपूर्वा, रागाकल, अवरगल, 47 नटकल, सिंधु भैरवी, एक दूजे के लिए। उन्हें भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए वर्ष 2010 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म एक दूजे के लिए से ये गीत।
And dear listeners, today is also the birthday of Parakkal Unnikrishnan, an Indian Carnatic vocalist and playback singer. And he won the National Film Award for Best Male Playback Singer for his debut film songs Enna Vale Adi Enna Vale and Uyirum Niye. These songs were composed by a renowned A.R. Rahman, with whom Unnikrishnan gave most of his memorable songs. He's the first male playback singer to be awarded the National Award for a Tamil song. And dear listeners, in 2014, he received the Kerala Sangeet Natak Academy Award for Classical Music.
தேடி என்னவளே என் இதயத்தை துளைத்து விட்டேன்.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का. अनुमति दीजिए आकर्षिता और शिफाली को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की. लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड FM 100.1 MHz पर.
स्टे ट्यून फॉर समाचार प्रभाग और हिंदी न्यूज बुलेटिन विच इज कमिंग अप नेक्स्ट. थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन. हैव अ सुपर्ब डे.
नमस्कार.